चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन के अंतिम सम्राट की आत्मकथा। तो शुरू करते हैं। अभी आप सुन रहे हैं आठवां अध्याय, भय से मुक्ति और गुनाह का एहसास के तहत अपने पापों के फल से आप कभी बच नहीं सकते, कड़ी। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी, जब मैं अपने परिवार के सदस्यों की लिखी हुई रिपोर्टें पढ़ने लगा तो मेरी हथेलियों से पसीना छूटने लगा। छोटे रुई की रिपोर्टों में उन अनाथ लड़कों का हवाला था जिन्हें मैंने लौंडो के रूप में नौकर रखा था। उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था और मैं उन्हें बारंबार कितना क्रूर और अन्यायपूर्ण दंड दिया करता था, इसका भंडाफोड़ उसने कर दिया था। भाग निकलने की कोशिश में एक लौंडे की मृत्यु की दास्तान भी उसने दर्ज कर दी थी। बड़े ली के आरोपों की भाषा ऐसी थी कि उसकी नफरत साफ साफ दिख जाए। ये व्यक्ति फूई, क्रूर, मृत्यु से डरने वाला और बहुत ज्यादा शंकालु था। वो बेहद धूर्त और सरासर ढोंगी भी था। अपने नौकरों के साथ उसका व्यवहार अमानुषिक था। बदमिजाजी के दौर में वो उन्हें गालियां देता था और उन्होंने कोई भूल न की हो तब भी उन्हें पिटवा देता था। अगर वो खुद जरा भी अनमना या थका हुआ होता तो नौकरों की खैर नहीं, और यदि सिर्फ कुछ घूंसों या लातों से उन्हें छुट्टी मिल जाए तो समझिए कि वे खुशकिस्मत थे। लेकिन अजनबी लोगों के बीच वो ऐसे व्यवहार करता था मानो इस धरती पर सबसे दयालु इंसान वही है। थियनचिन में वो लोगों को लाठियों से या फिर घोड़े के चाबुक से पिटवाता था, और मांचुकुओ युग में नई नई तरह से कोड़े लगाने और यातना देने के तरीके जुड़ गए थे। हरेक को वो अपनी साजिश में शरीक होने को बाध्य करता था। जब वो किसी को पिटवाना चाहता तो यदि कोई पीटने से मना कर देता या काफी जोर से पिटाई न करता तो उसे संदेह हो जाता कि कोई मिली भगत है। वैसा होने पर पीटने वाले की ही पिटाई होने लगती और कई गुना ज्यादा पिटाई। उसके तमाम भतीजों और अनुचरों ने कभी न कभी किसी न किसी की पिटाई की है। एक बार 12 या 13 साल के एक लौंडे को, जिसका नाम चौ पोरन था, जो अनाथ था, इस बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी जांघों पर एक एक फुट लंबे नील पड़ गए और डॉक्टर ह्वांग की देखरेख में उसे ठीक होने में 2 या 3 महीने लगे। जब इस लड़के का इलाज चल रहा था, फूयी ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए दूध वगैरह लेकर जाऊं और उससे कहूं कि महामान्य की तुम पर कितनी कृपा है, तुम्हें अनाथालय में कभी ऐसी अच्छी चीजें खाने को मिली थीं। इस आखिरी आरोप को पढ़ते पढ़ते मुझे शक होने लगा कि अपने बचाव में अतीत में जिन दलीलों का सहारा मैंने लिया था वे जायज नहीं हैं। मैं सोचा करता था कि मैंने जो कुछ किया है वो सब उचित था। मैं तो पूरी तरह जापानियों के दबाव में आ गया था और विवश होने से उनका कहा करता रहा। अपने घर बार के लोगों से मेरा व्यवहार, उन्हें दी गई यंत्रणाएं तक मुझे हमेशा वाजिब जान पड़ती थीं। सहजोर के आगे गिड़गिड़ाना और कमजोर को धमकाना मुझे स्वाभाविक भी लगता था, तर्कसंगत भी, और मैं सोचता था कि मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। लेकिन अब मुझे भान हुआ कि हर एक मेरी तरह नहीं होता और मेरी अपनी सफाई का तर्क कतई अमान्य था। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन के अंतिम सम्राट फूयी की आत्मकथा का 8वां अध्याय, भय से मुक्ति और गुनाह का एहसास के तहत अपने पापों के फल से आप कभी बच नहीं सकते। आखिर अपने तमाम अधिकारों से वंचित कैदियों से ज्यादा कमजोर और कौन होगा? लेकिन सत्ताधारी कम्युनिस्ट न तो हमें पीटते थे, न डांट फटकार सुनाते थे, न ही हमें इंसान से कमतर मानते थे। जहां तक ताकत का सवाल है, अमेरिकी फौजों के पास प्रथम श्रेणी के शस्त्रार्थ थे और उन्हें शक्तिशाली माना जा सकता था, पर कम्युनिस्ट फौजों ने अपने साजो सामान घटिया होने के बावजूद उनका डर नहीं माना और 3 वर्ष तक, जब तक कि अमेरिकी शांति संधि के लिए बाध्य नहीं हो गए, उनसे लड़ने का हौसला दिखाया था। अभी हाल के दिनों में मैंने और भी नए दृष्टांत देखे थे। जनता के आरोपों से मैंने जाना था कि हिंसा और अत्याचार के रूबरू होने पर बहुत से आम लोगों ने वो रास्ता नहीं अपनाया था जो मैंने अपनाया। पाइन काउंटी का एक किसान ली तेन क्वई जब जापानियों और गद्दारों के अत्याचार सहते सहते थक गया, तो उसने जापान विरोधी संश्रयकारी सेना को अपनी आशा का केंद्र बना लिया। 1941 से चीनी नववर्ष पर उसने जापान विरोधी योद्धाओं को 15 किलोग्राम कोदो, 47 तले हुए ट्विस्ट्स, 120 अंडे और 2 पैकेट सिगरेट भेजे थे। बाद में कठपुतली पुलिस को इतना पता लग गया और वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसे उल्टा लटकाकर कोड़े मारे गए थे और बिजली के झटके दिए गए थे। उसे भयभीत करने के लिए यातना देकर मारे गए लोगों की खून सनी लाशें उसके पास रखी गईं। ये सब उससे जापान विरोधी ताकतों का सुराग उगलवाने के लिए किया गया था। उसे यातनाएं दी जाती रहीं, जब तक कि जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद उसकी रिहाई नहीं हुई। 1943 में चिनशान गांव का ली इंग्वा अभी बच्चा ही था जब वहां से गुजर रहे जापान विरोधी योद्धाओं को उसने अंडे ले जाकर दिए और पुलिस के भेदियों को इसका पता लगने पर उसे पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। पहले तो उन्होंने उसे चाय और सिगरेट दी और चाओज़ खाने की दावत दी और बोले, तुम अभी निरे बच्चे हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं है, इसलिए अगर तुम बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ली इंग्वा ने सिगरेटें पी, चाय की चुस्कियां ली और चाओज़ खाए। अंत में उसने कहा, मैं तो किसान हूं और मुझे कुछ नहीं मालूम। तब पुलिस के दलालों ने उसे उल्टा लटका दिया और मारा और बिजली के झटके दिए, नंगा कर दिया, आग से दागा और कंटीली सलाखों से मारा, लेकिन उससे वे कुछ भी उगलवा नहीं पाए। अब मैं जान गया था कि इस धरती पर सारे के सारे लोग डरपोक या कमजोर नहीं हैं। मेरे विगत कार्यों का एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि मैं कमजोर को दबाता था और सहजोर से डरता था, और ये कि मुझे मौत का डर था और जीने को तरस रहा था। मेरा बुनियादी तर्क ये रहा था कि मेरा जीवन सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु है और बाकी सब लोगों की बनिस्पत मेरा बचा रहना अधिक कीमती है। पिछले कुछ वर्षों में अपने कपड़े धोने और डिब्बे बनाने के अपने प्रयत्नों से मैं कुछ कुछ जान गया था कि मेरी वास्तविक कीमत क्या है, और अब तो आम जनता के और खुद अपने परिवार के लोगों के आरोप पढ़कर मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया था। अपने चारों तरफ लगे आईनों में मैंने देखा कि मैं एक गुनहगार आदमी हूं जिसमें रंच मात्र गरिमा नहीं है और मेरे आचरण का कोई औचित्य बताना संभव नहीं है। मैंने अपने विरुद्ध आखिरी आरोप पर हस्ताक्षर किए और पश्चाताप और उदासी भरे दिल से गलियारा पार करने लगा। अपने पापों के फल से आप कभी बच नहीं सकते। तो श्रोता मित्रों, ये थी कड़ी, अपने पापों के फल से आप कभी बच नहीं सकते। चीन के अंतिम सम्राट फू यी की आत्मकथा का 8वां अध्याय भय से मुक्ति और गुनाह का एहसास यहीं समाप्त होती है। तो श्रोता मित्रों, अगली बार हम एक नए अध्याय के साथ आपके सामने फिर लौटेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें, नमस्कार।